नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनायक रिटायर्ड ने जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर राज्यवासियों को हार्दिक बधाई दी। भारतीय सेना के प्रति एकजुटता और समर्थन व्यक्त करते हुए तकसिंग और आसपास के गांवों के लोगों द्वारा स्वेच्छा से LAC से लगे दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सेना के जवानों तक भोजन और अन्य आवश्यक सामान पहुंचाए जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री पीडी सोना ने विधानसभा अध्यक्ष तेसाम पोंगते की अध्यक्षता में 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की 7वीं बैठक में हिस्सा लिया। महिला एवं बाल विकास विभाग तवांग द्वारा महिलाओं और बाल संरक्षण कानूनों तथा योजनाओं पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। ईस्ट सियांग जिले के रायांग निवासी गोमन पांगेंग दूरदर्शन नई दिल्ली से ग्रेड प्राप्त करने वाले अरुणाचल प्रदेश के पहले कथक नर्तक बने। कैपिटल कॉम्प्लेक्स एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा अरुणाचल एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन ने बैनर तले इंटर क्लब बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 6वें संस्करण का नाहरलगन स्थित स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI STC सेंटर में शुभारंभ। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए DNA प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1282 हुई। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा है कि ये राष्ट्र के लिए गौरव का क्षण है। इस दौरान श्री मोदी ने कहा है कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
I am very happy to announce that GSLV.
मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को इटली के युद्धवाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि यह उपलब्धि उनके नेतृत्व में इटली के लोगों के भरोसे और विश्वास को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी दोस्ती ने भारत इटली रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने की मुख्य भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा है कि वो दोनों देशों के लोगों के लिए एक समृद्ध भविष्य बनाने के लिए करीबी सहयोग जारी रखने के लिए उत्साहित हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और संदेश से भारतीय संस्कृति और दर्शन में जीवंतता आती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन और संदेश मानवता को सत्य, धर्म, कर्तव्य और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवता का निरंतर मार्गदर्शन करने वाले भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों में निस्वार्थ कर्म की प्रेरणा निहित है। इधर अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक रिटायर ने जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर राज्यवासियों को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कामना की है कि ये पवित्र त्यौहार सभी को प्रेम, करुणा, सत्य, सद्भाव और अनेकता में एकता जैसे मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य जन्म की याद दिलाती है और उनके जीवन व शिक्षाओं का उत्सव मनाती है। उनकी कालजयी समझ मानवता को हमेशा रोशन करती रहेंगी। राज्यपाल ने कामना की है कि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद हर घर में शांति, सुख और समृद्धि लाए और उनका दिव्य ज्ञान हमें उद्देश्यपूर्ण, सम्मानजनक, करुणा और सदाचारी जीवन की ओर ले जाए। अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री पीडी सोना ने विधानसभा अध्यक्ष तेसाम पोंगते की अध्यक्षता में 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की 7वीं बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में सदन के प्रस्तावित कार्यों पर विचार विमर्श किया गया और आगामी विधानसभा कार्यवाही के लिए कार्यक्रमों की सूची को अंतिम रूप देने पर चर्चा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इस तरह की चर्चाएं सदन के कामकाज को व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इससे राज्य और लोगों से जुड़े विषयों पर सार्थक विचार विमर्श के लिए पर्याप्त अवसर सुनिश्चित होते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग तवांग द्वारा डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में महिला और बाल संरक्षण कानूनों तथा योजनाओं पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जैसे सरकारी और निजी स्कूलों के शिक्षकों के साथ साथ अन्य हितधारकों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीडीपीओ तवांग दोंदू पेमा ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, कल्याण, गरिमा और अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध कानूनों, योजनाओं और संस्थागत सहायता तंत्र के बारे में अधिक जागरूकता के महत्व पर भी जोर दिया। ईस्ट सियांग जिले के रायंग निवासी गोमन पांगेंग दूरदर्शन नई दिल्ली से ग्रेड प्राप्त करने वाले अरुणाचल प्रदेश के पहले कथक नर्तक बन गए हैं। उन्होंने प्रतिष्ठित बी ग्रेड कलाकार का दर्जा प्राप्त किया। इस उपलब्धि के अलावा गोमन संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली CCRT छात्रवृत्ति के भी प्राप्त करता है। भारतीय सेना के प्रति एकजुटता और समर्थन व्यक्त करते हुए तकसिंग तथा आसपास के गांवों के लोग स्वेच्छा से आगे आए हैं। ग्रामीण वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LSC से लगे दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सेना के जवानों तक भोजन और अन्य आवश्यक सामान पहुंचा रहे हैं। क्षेत्र में मोटर योग्य सड़क संपर्क उपलब्ध नहीं होने के कारण कठिन और दुर्गम पहाड़ी इलाकों के बावजूद ग्रामीण सिर पर सामान ढोकर आवश्यक वस्तुएं सेना तक पहुँचा रही है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा अरुणाचल एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन के बैनर तले इंटर क्लब बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 6वें संस्करण का नाहरलगन स्थित स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI STC सेंटर में शुभारंभ हुआ। इस वर्ष प्रतियोगिता की थीम है कौशल, एकाग्रता और खेल भावना की भावना का उत्सव मनाना। चैंपियनशिप में पूरे क्षेत्र के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हुआ। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदारी देशों के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। इस दौरान प्रतिनिधियों को अनुभव और विचारों के आदान प्रदान का भी अवसर मिलेगा। यह 3 दिवसीय मंच न्याय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा का अवसर देगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
नेपाल और तिब्बत में अचानक आए विनाशकारी बाढ़ से अब तक 1,282 लोगों की मृत्यु हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 959 लोगों की मौत हुई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।